أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب قلندر شعور، صفحة نمبر 133. topic ہے وقت کی نفی. گزشتہ topic میں ہم نے دیکھا، پڑھا یا مطالعہ کیا کہ ہمارے اندر رنگ جو ہیں، رنگوں کی لہریں جو ہیں، یہ کرنٹ بن کر دور کرتی ہیں، ان کا بہاؤ جو ہے یہ کرنٹ کہلاتا ہے. اور اس کرنٹ کو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور نہیں کرنا چاہیں تو نہ کریں. یہ سب اللہ نے آپ کے اوپر چھوڑ دیے. جب آپ اس الیکٹریسٹی کے ذخیرے کو بڑھاتے ہیں تو اپنے ارادے اور اختیار سے زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاتے ہیں، اور پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے اپنی زمین کی طرح کی بے شمار زمینیں آ جاتی ہیں، کہکشانی نظام آ جاتے ہیں، سولر سسٹم آ جاتے ہیں. پھر جس طرح وہ اس دنیا میں آباد اللہ کی مخلوق کو دیکھتا ہے، اسی طرح خربوں دنیاؤں کا بھی مشاہدہ کرتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہم نے پڑھ لیں. اب ان کو سمجھانے کے لیے مزید کچھ نکات ہیں جو واضح کیے جائیں گے. یہ کتاب کا اب آخری حصہ شروع ہو چکا ہے. اب اس میں یہ بتایا کہ جب یہ کرنٹ بڑھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کہ وقت کی نفی. وقت کی نفی. اب وقت کی نفی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ آپ چیزوں کو جب اس کی اصل حالت میں دیکھنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ جو وقت کے گزرنے کا احساس ہے، اس سے آپ اوپر اٹھ جاتے ہیں. حضور مرشد کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی آدمی کے اندر پرواز کی صلاحیتوں کا انحصار بجلی کے ذخیرے کے اوپر ہے. یعنی جو بندہ جتنا زیادہ اپنے اندر اس کرنٹ کا، اس الیکٹریسٹی کا ذخیرہ کر لیتا ہے، یعنی اپنے نسمہ کو چارج کر لیتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اس کے اندر پرواز کی صلاحیتوں کھلتی ہیں. فرمایا کہ پرواز کی صلاحیتوں کا انحصار اس بجلی کے ذخیرے کے اوپر ہے. جتنا زیادہ ذخیرہ موجود ہوتا ہے، اسی مناسبت سے آدمی ٹائم اینڈ سپیس کی نفی کرنے پر قدرت حاصل کر لیتا ہے. اب اس میں دو چیزیں، زمانیت اور مکانیت کی نفی کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے اس میں، یعنی وہ اس پر قدرت حاصل کر لیتا ہے. لفظ قدرت جو ہے یہ قدر سے ہے. قدرت، قدر کا مطلب ہے مقداروں کا تعین کرنا. تو قدرت حاصل کر لیتا ہے، یعنی کہ وہ ان کی مقداروں پہ کنٹرول پا لیتا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ ایک منٹ کے وقفے میں آدم ذات نے بغیر کسی مادی وسائل کے کئی سال کا سفر طے کر لیا. اب ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ غوث علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. لباس کے اعتبار سے وہ کوئی شاہی عہدے دار معلوم ہوتا تھا. شاہ صاحب سے کہنے لگا کہ حضرت، میری سرگزشت اتنی عجیب و غریب ہے کہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، اس معاملے میں میری عقل بھی کام نہیں کرتی، حیران ہوں کہ کیا کہوں، کیا کروں، کہاں جاؤں. آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جو حکم فرمائیں گے بجا لاؤں گا. پھر اس شخص نے اپنی سرگزشت بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں لکھنؤ میں رہتا تھا، برسر روزگار تھا، حالات اچھے گزر رہے تھے، قسمت نے پلٹا کھایا، معاشی حالات خراب ہونے لگے اور زیادہ وقت بیکاری میں گزرنے لگا. میں نے سوچا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ بیرون شہر حصول معاش کی کوشش کی جائے. تھوڑا سا زیادہ راہ ساتھ لیا اور ادے پور کی طرف روانہ ہو گیا. रास्ते में रेवाड़ी के मुकाम पर क्याम किया। उस जमाने में वो जगह वीरान पड़ी थी, सिर्फ एक सराय आबाद थी। सराय में कुछ कस्बियां रहती थी। अब ये कस्बियां यानी जो कसब काम करती हैं उनके हवाले से है। मैं सराय में मुतफक्कर बैठा था कि क्या किया जाए, पैसे भी खत्म हो गए थे। एक कस्बी आई वहां काम करने वाली और कहने लगी, साहब खाना तैयार है, खाना लाऊं? मैंने कहा अभी सफर की थकान है, थोड़ा सा जरा सा सस्ता लूं, थकन दूर होने पर खाना खाऊंगा। ये सुनकर वो चली गई। कुछ देर बाद आई, फिर वही सवाल किया, मैंने फिर वही जवाब दिया, वो चली गई। तीसरी मर्तबा आकर पूछा तो मैंने सब कुछ बता दिया कि मेरे पास जो कुछ था वो खर्च हो गया है, अब हथियार और घोड़ा बेचने की नौबत आ गई है। वो सुनकर खामोश होकर चली गई। फिर 10 रुपए लाकर मुझे दिए और कहा कि ये रुपए मैंने चरखा काट कर अपने कफन दफन के लिए जमा किए हैं। गौर करें, उस जमाने में ये 10 रुपए क्या माने रखते थे जब 10 रुपए में कफन दफन पूरा हो जाता था। ये मैं आपको बतौर कर्जे हंसना देती हूं, जब अल्लाह आपको दे तो अदा कर दीजिएगा। मैंने रुपए ले लिए, रास्ते में खर्च करता हुआ उदयपुर जा पहुंचा। वहां अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि फौरन एक शाही नौकरी मुझे मिल गई। माली एतबार से खूब तरक्की हुई, चंद सालों में दौलत की रेल पेल हो गई। उन्हीं दिनों घर से खत आया कि लड़का जवानी की हदूद में कदम रख चुका है, जहां उसकी निस्बत ठहराई गई है वो लोग शादी पर इसरार कर रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द आकर इस फर्ज से सुबकदोश हो जाओ। राजा से इजाजत लेकर मैं अपने घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में रेवाड़ी का मुकाम आया, पुराने वाकयात ज़हन में ताज़ा हो गए। सराय जाकर उस कस्बे के मुतालिक मालूम किया तो पता चला कि वो सख्त बीमार और चंद लम्हों की मेहमान है। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो आखिरी सांसें ले रही थी। देखते ही देखते उसकी रूह परवाज कर गई। मैंने तजहीज़ो तकफीन की और अपने हाथ से कब्र में उतारा। इस काम से फारिग होकर सराय में आकर सो गया। आधी रात के वक्त पैसों का ख्याल आया तो देखा कि जेब में रखी हुई 5,000 की हुंडी गायब थी। हुंडी का मतलब है जैसे प्रोनोट हो या आपका पे ऑर्डर हो। उस जमाने में ये पे ऑर्डर को हुंडी के लिए असल लफ्ज़ है। तलाश किया मगर ना मिली। सोचा कि दफन करते वक्त शायद कब्र में गिर गई होगी, तो इस ख्याल से कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र खोदने लगा। कब्र के अंदर उतरा तो अजीब व गरीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा। वहां ना मैयत थी ना हुंडी, एक तरफ दरवाजा नजर आ रहा था। हिम्मत करके दरवाजे के अंदर कदम रखा तो एक नई दुनिया सामने थी। चारों तरफ बागात का सिलसिला फैला हुआ था और हरे भरे फलदार दरख्त सर उठाए खड़े थे। बाग में एक तरफ एक आलीशान इमारत बनी हुई थी। इमारत के अंदर कदम रखा तो एक हसीनो जमील औरत पर नजर पड़ी, जो शहाना लिबास पहने बनाओ सिंगार किए बैठी थी और इर्द गिर्द खिदमतगार हाथ बांधे खड़े थे। उस औरत ने मुझे मुखातिब करके कहा, तुमने मुझे पहचाना? मैं वही हूं जिसने तुम्हें 10 रुपए दिए थे। अल्लाह को मेरा ये अमल पसंद आया और उस अमल की बदौलत मुझे ये मर्तबा और अरूज अनायत फरमाया। और ये तुम्हारी हुंडी है जो कब्र में गिर गई थी, ये लो, फौरन चले जाओ। मैंने उससे कहा कि मैं कुछ देर यहां ठहर कर सैर करना चाहता हूं। उस औरत ने जवाब दिया, तुम कयामत तक यहाँ की सैर नहीं कर सकते, फौरन चले जाओ। इस अरसे में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई होगी। औरत की हिदायत पर मैंने अमल किया। बाहर निकला तो अजीब आलम था, ना वहां सराय थी ना ही वो लोग थे जो उसके कब्र के अंदर जाते वक्त मौजूद थे, बल्कि चारों तरफ शहरी आबादी फैली हुई थी। कुछ लोगों से सराय के बारे में पूछा लेकिन सब ने अपनी लाइलमी का इजहार किया, बाज लोगों से अपनी रुदात बयान की, लेकिन सब ने मुझे मखबूतुल हवास करार दिया। आखिरकार मुझे एक आदमी ने कहा, मैं तुम्हें एक बुजुर्ग के पास ले चलता हूँ, वो उम्र रसीदा हैं, शायद वो कुछ बता सके। उस बुजुर्ग ने सारा हाल सुना, कुछ देर सोचने के बाद कहा, मुझे कुछ कुछ याद पड़ता है कि मेरे परदादा ने बताया था, मेरे परदादा बताया करते थे कि किसी जमाने में यहाँ एक सराय मौजूद थी, सराय में एक अमीर आकर ठहरा था और एक रात वो पुरेसरार तरीके से गायब हो गया, फिर उसके बारे में कुछ पता ना चला। मैंने कहा कि मैं वही अमीर हूँ जो सराय से गायब हुआ था। ये सुनकर बुजुर्ग और हाजरीन महफिल बहुत हैरान हुए। इतना बताकर वो खामोश हो गया। फिर शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, अब बताइए मैं क्या करूं, कहां जाऊं, ना घर है ना ठिकाना। दूसरे ये कि इस हैरत अंगेज और नाकाबले यकीन वाक्य ने मेरे जहन को मफलूज करके रख दिया। शाह साहब ने कहा, तुमने जो बताया है वो सही है, उस आलम और इस आलम के वक्त के पैमाने अलग अलग हैं। शाह अब्दुल अजीज साहब ने क्या तबसरा किया कि जिस आलम में तुम गए और यहां जिस आलम में तुम हो, इन दोनों में वक्त के पैमाने अलग अलग हैं, यानी जमानियत वहां पे और तरह से चलती है, यहां पे और तरह से चल रही है। शाह साहब ने उस शख्स को हदायत की कि अब तुम बैतुल्ला को चले जाओ और बाकी जिंदगी याद इलाही में गुजार दो। चुनाचे आपने उसे ज़ादे राह देकर रवाना फरमा दिया। इस वाक्य में ये बताया कि आलम एराफ में जो जिंदगी है वो किस तरह से है, दूसरे वहां पे जमानियत के जो मयार हैं, जिस रफ्तार से वहाँ टाइम गुजर रहा है दुनिया में, वो रफ्तार नहीं है। वहाँ बहुत तेज रफ्तारी से वक्त गुजरता है, लेकिन जाहिर है वहाँ के पैमाने और हैं। उतनी ही देर में दुनिया में 100 साल गुजर गए, क्योंकि परदादा ने बताया, एक बुढ़ा कह रहा है कि मेरे परदादा बताया कर रहे थे। दादा नहीं, बाप का बाप नहीं, बाप के बाप का बाप, चार नस्लें बीच में गुजरती हैं। बहरहाल तो ये टाइम एंड स्पेस की नफी, यानी कि उस औरत के नेक अमल की वजह से उसके अंदर इतनी चार्जिंग पैदा हो गई कि जब वो साहब जो उसकी मैयत के करीब गए तो उनके हवास पे वहां की जमानियत तारी हो गई। जब उस औरत ने कहा चले जाओ यहां से अपनी हुंडी लेके, तो वो उतनी देर में दुनिया 100 साल आगे निकल गई या 150 साल आगे निकल गई, अंदाजा कर लिया। तो अगला टॉपिक है ऑक्सीजन और जिस्मानी निजाम। अब ये जो इस किस्म के मुहैयरल अकूल वाकयात होते हैं, इसके पीछे बॉडी के ये जो करंट्स का निजाम है उसके पीछे क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और जिस्मानी निजाम। मौजूदा इल्मी और साइंसी दौर ने ये बात मालूम कर ली है कि इंसान को अगर कुछ वक्फे के लिए ऑक्सीजन ना मिले तो उसके दिमाग में काम करने वाले खरबों खलियों का अमल खत्म हो जाता है, यानी सारा जिस्म ऑक्सीजन के ऊपर कायम है और सांस की आमद व शुद्ध या अमले तनफ्फुस ना होने से ऑक्सीजन अमले तनफ्फुस हवा से ऑक्सीजन हासिल करने में हमा वक्त मसरूफ रहता है। हवा नाक या मुंह के जरिए जिस्म में खींची जाती है और आवाज के खाने यानी लैरिंक्स से गुजरती हुई हवा की खास नाली जिसको ट्रेकिया कहते हैं उसमें जाती है और वहां से नालियों का एक नाजक निजाम में दाखिल हो जाती है। जैसे जैसे हवा आगे बढ़ती है और हवा का दबाव ज्यादा होता है, नालियों का कतर बतदरीज छोटा होता चला जाता है, चुनाचे हवा फेफड़ों की इंतहाई गहराइयों तक पहुंच जाती है, जहां तकरीबन 300 मिलियन, 300 मिलियन कितने हुए, तकरीबन 30 करोड़, हवा की थैलियों से गुजरकर ऑक्सीजन खून में दाखिल हो जाती है, अगर हवा का दबाव सही हो और ऑक्सीजन की मिकदार भी सही हो, तो फिर वो आसानी से हवा की थैलियों और बारीक रगों की झिल्लियों में से गुजरकर अंदर फैल जाती है। जब हम अंदर सांस खींचते हैं तो सीने की खाली जगह बड़ी हो जाती है, लिहाजा हवा तेजी से अंदर चली जाती है, फिर जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो फेफड़ों का लचकदार निजाम हवा को गोया बाहर फेंक देते हैं। सांस लेने का मकसद भी यही है कि जिस्म में मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन पहुंचती रहे, ताकि खलियों में नन्नी नन्नी अंगीठियां दहकती रहें। इस लफ्ज अंगीठियों पे गौर करें, हवा जलाती है ना चीजों को, और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होता रहे। इंसान जब आराम करता है उस वक्त वो 1 मिनट में 10 से 16 बार तक सांस लेता है, जब आराम कर रहा हो। नॉर्मली ये मिकदार 18 से 20 सांस पर मिनट है, और तकरीबन 1 पॉइंट हवा अंदरूनी जिस्मानी निजाम में दाखिल होती रहती है। जब ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पेश आती है तो सांस लेने की रफ्तार में इजाफा हो जाता है। आप देखें ना, जब भी आप कोई काम करते हैं जिसमें फिजिकल एक्सर्शन हो तो सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन का जखीरा तो होता नहीं है, इसलिए उस वक्त जो ऑक्सीजन दरकार होती है फिर वो सांस की रफ्तार तेज होकर उस कमी को पूरा करने में लग जाती है। आमतौर पर सांस की रफ्तार और गहराई खुद ब खुद दिमाग कंट्रोल करता रहता है। कुदरत ने इंसान के अंदर यह सलाहियत पैदा की है कि वो हसब जरूरत सांस में तेजी या कमी पैदा कर सकता है। इंसान अगर ज़हनी तौर पर सेहतमंद है तो बेशतर हालात में उसे अपने सांस पर इख्तियार हासिल होता है। नोट करें, सांस पे इख्तियार है, यानी आप अधूरा सांस लेते हैं या पूरा सांस लेते हैं, ये इख्तियार आपका है। अगर ज़हनी तौर पर आप सेहतमंद हो, शर्त सिर्फ ये, अगर आप ज़हनी तौर पे सेहतमंद नहीं है तो फिर आपको अपने सांस पे कोई कंट्रोल नहीं है। कानून सुन लिया आपने, कितनी बड़ी बात कह दी। इसकी एक मिसाल ये है कि पैराकी के दौरान, यानी पैराकी और तैराकी में क्या फर्क है, पैराकी पानी के अंदर तैरने को पैराकी कहते हैं और पानी के ऊपर तैरने को तैराकी कहते हैं। तो पैराकी के दौरान जब आदमी गोता लगाकर पानी के नीचे चला जाता है तो उसे सांस रोकने की जरूरत पेश आती है, और वो ये काम आसानी के साथ कर लेता है। जब जमाई आती है या गहरा सांस लिया जाता है तो इससे सुकून हासिल होता है, और जब सांस की नाली में कोई खराबी वाकया हो जाती है तो आदमी बेहद सरासीमा हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। मुख्तसर ये कि जिंदगी का कायम सांस के ऊपर है। देखे ना, अब हमारी इस मादी जिंदगी का कायम है सांस पे। सांस जारी है तो जिंदगी बरकरार है, और जब सांस का सिलसिला खत्म हो जाता है तो जिंदगी भी खत्म हो जाती है। ये है हमारी जिंदगी का बुनियाद, क्या है, सांस। अब सांस का ताल्लुक ऑक्सीजन के ऊपर है, यानी सांस लेने से क्या होता है, ऑक्सीजन मिलती है। अब ऑक्सीजन का एक बड़ा जखीरा दिमाग के एक मखसूस हिस्से में जमा रहता है, और दिमाग का ये वही हिस्सा है जो दिल की धड़कन और अमले तनफ्फुस को बरकरार रखता है। यानी दिमाग के अंदर एक हिस्सा है जो दिल की धड़कन और अमले तनफ्फुस दोनों को बरकरार रखता है, और अगर वहां जखीरा खत्म हो जाए तो कहां से दिल की धड़कन बरकरार, दिल धड़कना ही बंद हो जाता है। फिल वाक्या इंसान की मौत में इंसान की मौत उस वक्त वाक्या होती है जब दिमाग के अंदर ऑक्सीजन का पूरा जखीरा खत्म हो जाए। दिल की हरकत बंद हो जाने से अगर मौत वाक्या हो जाए और दिमाग के अंदर ऑक्सीजन का जखीरा मौजूद रहे, तो इस अमल को मरना नहीं कहते, तिब्बी इस्तलाह में इसे सकता कहा जाता है, जिसे कोमा कहते हैं। ये रोजमर्रा मुशाहदे की बात है कि हम के बीमार को नाजुक हालत में ऑक्सीजन दी जाती है। अब ये कोरोना में क्या करते थे, ऑक्सीजन देते थे। अगर यही कोरोना के मतलब है वेंटिलेटर के बजाय आप खुद अपनी ताकत से अपने इरादे से पूरा सांस लेते रहे तो कोई कोरोना शरोना नहीं था। और इसी तरह बड़ी से बड़ी बीमारी पर आर्जी तौर पर ही सही मगर गलबा हासिल कर लिया जाता है। एहसनुल खालिकीन, अल्लाह ने हमारे फेफड़ों की तख्लीक कुछ इस तरह की है कि तमाम जिस्म का खून 3 मिनट में फेफड़ों के रास्ते ऑक्सीजन लेकर वापस जिस्म में चला जाता है। मतलब ये कि हर 3 मिनट के बाद जिस्म में दौड़ करने वाला खून ऑक्सीजन लेने के लिए दोबारा फेफड़ों में आ जाता है। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हवा में 21% ऑक्सीजन हमारे अंदर चली जाती है और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन खर्च होने के बाद तकरीबन 12% रह जाती है, यानी 9% ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं। मश्क के जरिए अगर दिमाग के अंदर ऑक्सीजन का जखीरा कर लिया जाए और रूहानी तर्जों में उस जखीरे को इस्तेमाल करने का तरीका भी सीख लिया जाए, तो अपने इरादे और इख्तियार से दिल की धड़कन और अमले तनफ्फुस को बंद करके आदमी महीनों तक जिंदा रह सकता है। और फिर अपने इरादे और इख्तियार से दिनों हफ्तों और महीनों की आर्जी मौत से निजात हासिल कर लेता है। अंदाजा करें कि इंसान को किस दर्जे इख्तियार है कि वो अपने दिल को चलाने तक पे इख्तियार हासिल कर सकता है। दिल की रफ्तार कंट्रोल करते हुए इसको ये जो 80 के करीब 80 पल्सेशन यानी कि पल्स रेट 70-72 से लेकर 80 या उससे कम करते हुए उसे वो 1 या 2 दफा दिल धड़कता है 1 मिनट में, अंदाजा कर ले वो हल्का हल्का। तो जहां वो गया 1 मिनट में 80 बार धड़कता है या 72 बार धड़कता है या 70 बार धड़कता है, वहां पे वो 1 मिनट में 4 या 5 या 7 दफा धड़के तो 10 गुना उसकी उम्र में इजाफा हो गया। गौर करें, यानी कि ये सारा निजाम ऑक्सीजन पे कायम है और ये दिमागी खलियों में ये। अब इसके पीछे अल्लाह ने इंसान को इरादे की ताकत और इख्तियार दिया। इसके बाद अगला वाक्या जो है ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, यहां तक मेरा ख्याल है रुक जाते हैं। तो इस बारे में आपको ये बात समझ आ रही है कि दिमागी या आपके जिस्म में जो आपने सवाल पूछा था कि करंट कैसे बढ़ाते हैं, तो पहले आपको अपने बॉडी में देखें ना, ऑक्सीजन के हवाले से जिस्मानी निज़ाम के हवाले से माशाल्लाह कितने तवील ये लेक्चर दिया हजूर मुर्शिद करीम ने। तो अब ये इसके बाद फिर आगे बताएंगे आपको मजीद तरीके कि सांस कैसे सही तरह से लेने का सही तरीका है। जी ठीक हो गया जी?
जी सर।
मेरा ख्याल है इसमें तो कोई वजाहत तलब बात नहीं है, इसमें सारी बातें अब माशाल्लाह आप समझ रहे हैं। फिर भी कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ।
औरत कस्बी अराफ में वो आदमी को मिली, तो उसने कहा कि फौरन चले जाओ, इस अरसे में दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुकी होगी।
जी,
तो आराम में ये पता होता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ तक चले गई है, या क्या
हाँ
हो रहा है
जी,
दुनिया में?
जाहिर है वहां के हवास की रफ्तारें और हैं। देखें, ये बात बड़ी वजाहत से मैंने इन्हीं बातों के दौरान आपसे अर्ज किया था कि कुरान हमें हवास के दर्जा बंदियां कुरान ने वाजे किया। सबसे पहले किसी को ये अल्लाह ने शऊर देना था, उसी ने दिया। हम लोग चूंकि कुरान सिर्फ पढ़ते हैं, ना समझते हैं, ना उस पर अमल करते हैं, तो ये कहाँ से होगा? अब मसलन कुरान ने लैल का लफ्ज इस्तेमाल किया, नहार का किया, लैलतुल कदर का किया, मौत का किया, फिर उसके बाद कयामत का किया, फिर हशर नशर का किया। ये सब का सब हवास की रफ्तारें हैं। नहार हवास की एक रफ्तार है जो कि वादी जोन में चल रही है। ये बहुत ही स्लगिश, बहुत ही सुस्त रफ्तार है। ये ठुस बैल है। एक तो बैल, अब बैलगाड़ी की क्या रफ्तार होती है, और ऊपर से वो ठुस भी हो, यानी कि बैल चल के ही ना दे, इस तरह से घिसट रहे हो। नींद में ये हवास 70 गुना बढ़ जाती है, फिर लैलतुल कदर में ये हवास की रफ्तार 70,000 गुना हो जाती है, मौत के वक्त ये रफ्तार 3,65,000 गुना हो जाती है। जब ये रफ्तार 3,65,000 गुना होगी, तो वो 1 सेकंड जो हमारे लिए 1 सेकंड है, गौर करें, वो 3,65,000 गुना नहीं बढ़ गया उसका फैलाव। अब अगर आप ये 1 सेकंड ऊपर गुजारेंगे, तो यहां नीचे तो 3,65,000 सेकंड गुजर गए ना भाई। देखे ना, अल्लाह रब्बे करीम ने क्या बात इरशाद फरमाई कि मेरा एक दिन तुम्हारे 1,000 साल के बराबर है। क्या मतलब? कि जितना काम 1,000 साल में हम करते हैं, उतनी देर में अल्लाह मियां का एक दिन गुजरता है। गौर करें, अब ये तर्जुमा है उस आयत का। इसी तरह फरमाया कि मेरा एक दिन तुम्हारे 10,000 साल के बराबर है, फिर एक जगह फरमाया कि मेरा एक दिन तुम्हारे 50,000 साल के बराबर है। क्या मतलब हुआ इसका? हवास की रफ्तारों को, जाहिर है ये आपकी एनर्जी का जखीरा, ये आपके अंदर करंट्स, ये आपके ऑक्सीजन का निजाम, ये मादी जोन में आपको ये एहतमाम करना है। अगर आपने कर लिया, आपके करंट्स बढ़ गए, तो नतीजा ये होगा कि आप वक्त की नफी पे कादिर हो सकेंगे। वक्त की नफी का मतलब है कि आप हायर लेवल ऑफ टाइम में जब वक्त स्पेंड करेंगे, तो दुनिया का टाइम कैसा तेजी से गुजरेगा। अब ये लोग जो यकसू होते हैं, यकसू हो जाते हैं, ये उनके मुशाहिदे में आ जाता है कि सुबह होती है, शाम हो जाती है, आदमी हैरान होता है कि यार ये दिन कहाँ चला गया, क्या हो गया, बड़ी जल्दी गुजर गया वक्त। ये कभी नोट किया आपने? लेकिन जब आप दुनिया में घुसे हुए हो, परेशान हो, तो दिन से सुबह से शाम करना दुश्वार हो जाता है, दिन ही नहीं गुजर के देता। तो ये हवास की रफ्तारों का चक्कर है सारा। ठीक है जी?
जी सर। डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछो।
इरशाद जनाब।
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। जी जी भाई।
डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ख्वास के सारे माहौल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने इसका मादी जिस्म के साथ उसको जन्नत की वो माहौल की जो है ना फ्रीक्वेंसी उसको दिखा दी।
जी जी
इसका मतलब तो यही हुआ।
बिल्कुल
ठीक है,
बिल्कुल।
अल्लाह चाहे तो हर चीज का कादिर मुतलक है।
जी जी
इसका मतलब ये जमाने एतबार से अगर देखा जाए तो उस शख्स की, उसकी शख्स की जो एज जो है इस दुनिया में सबसे ज्यादा उसी की बनेगी।
बिल्कुल
दुनियावी लिहाज से अगर देखा जाए,
हाँ,
तो 150 साल कहना आसान है
जी जी,
उसमें पत्नी की 3-4 नस्लें आराम से निकल जाती
जी। परदादा कहने का मतलब ही है 4 नस्लें।
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सवाल जो है बेसिकली वो ये है कि आया शौरी ख्वास में रहते कैसा शख्स दुनियादार है, कोई उसको रूहानी से दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, और उसकी अगर ये शौर का लेवल अल्लाह ने उसको अता कर दिया, ये उसके
जी हाँ, तो उसका शौर बैठ जाएगा ना, जब उसका शौर ही नहीं तैयार उसके लिए तो अल्लाह ने अता कर दिया तो क्या होगा है? वो तो एकदम मतलब है, जैसे अब आप एकदम किसी के सर पे 20 मन वजन रख दे हैं, वो तो बैठ जाएगा।
बिल्कुल ऐसे ही है।
इसीलिए शौर को बहुत आहिस्ता आहिस्ता तवाना किया जाना जरूरी है। पहले शऊर को तवाना किया जाता है ताकि आप उस रफ्तारों के अहल हो सके, उनको बर्दाश्त कर सके। अल्लाह मियाँ का निज़ाम बड़ा कम्प्रिहेंसिव है, वो ऐसे ऐरे गैरे नथू खैरे को नहीं नवाज देते। उसके लिए देखे ना, एक बंदा अपने शऊर को डेवलप कर रहा है, यही तज़किया है, इसी का नाम तज़किया है। जब आप तज़किया करते हैं अपने नफ्स को, यानी अपने सॉरी शऊर को डेवलप करते हैं, अपने नफ्स का इरफान हासिल करते हैं, तो अल्लाह करम करता है, फिर आपको नवाज देता है। वो जब चाहे नवाज दे, आप उसकी रजा पे राजी रह के देखे, कोशिश करते रहे, ठीक है?
सही। अस्सलामुअलैकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई
सर, ये जब हम अपने शौर को डेवलपमेंट करते हैं शौर के, तो उसमें लड़खड़ाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं
जी हाँ।
तो उससे कैसे बचा जाए?
बस आप अपनी उस पे कायम रहिए। आदमी देखे, बच्चा जो है लड़खड़ाता है तो चलना सीखता है ना, है? या पहले दिन ही माँ के पेट से निकल के वो दौड़ना शुरू कर देता है?
नहीं सर, ऐसा
हाँ देखें, वो गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है। आप अपने इरादे पे कायम रहें कि भी मैंने लड़खड़ाना नहीं है, मैंने अपनी टांगे मजबूत करनी है, वर्जिश करनी है, जो भी है, ठीक है? देखे ना, सारा निजाम तो अल्लाह ने आपके कंट्रोल में दे दिया, आपने सिर्फ टारगेट की तरफ नजर रखनी है और उस तरफ बढ़ते रहना है। टारगेट क्या है कि मुझे अल्लाह की बात समझनी है, मैं अल्लाह की बात को समझने के चक्कर में पड़ जाऊं, जितना मर्जी मैं लड़खड़ाता रहूं, है? आखिर कभी ना कभी तो अल्लाह सक्कत दे देगा ना भाई। अल्लाह ने ही सक्कत देनी है, वो अपने वक्त पे जैसे बीज में से पौधा निकलता है, वो आहिस्ता आहिस्ता आखिर तना बन ही जाता है, पत्ते आ ही जाते हैं, आखिर वो फूल निकल ही आते हैं। इसी तरह इंसानी शऊर भी रफ्ता रफ्ता ग्रो करता है, ठीक है? अब 18 साल में आप बालिग होते हैं, गौर करें जरा। आप चाहते हैं कि मैं एक टेक्स्ट मैसेज पे या एक वीडियो वॉइस क्लिप पे या एक वीडियो क्लिप में पूरी बात समझ आ जाए। पहले होता था कि एक आध किताब पढ़ ली तो उससे क्या, हम तवक्को करते थे कि जी मैंने एक किताब पढ़ ली तो मुझे समझ आ गई सारी। नहीं भाई, बात यह है कि एक चीज को रफ्ता रफ्ता, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि जी आदमी लड़खड़ाने से बचे। क्यों बचे भाई? लड़खड़ा के गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, आखिर पैरों पे खड़े हो जाएंगे ना, जब समझ आ जाएगी कि नहीं मुझे नहीं लड़खड़ाना। आप हिम्मत करेंगे ना, हिम्मत किसने करनी है?
हमने खुद ही करनी है।
बिल्कुल, बस आप लड़खड़ाएं या कुछ भी करें, आप वापस पलट के आ जाएं रास्ते पे, लल्ला खैर सल्ला। मतलब है कि आज बच्चे को यही तो दर्श दिया जाता है कि भाई तुमने अपनी हिम्मत नहीं हारनी। हम जब अल्लाह पे यकीन कर लिया, अल्लाह के भरोसे पे आ गए, अल्लाह को समझने बैठ गए, बस पटरी पे चढ़ गए। अब वो गड़गड़ होती है, धड़धड़ होती है, लड़खड़ाहट होती है, कुछ भी होता है, होता रहे, हमें क्या लेना देना, ठीक है ना? मैं ये गाड़ी में बैठते ही समझूं कि मैं लाहौर पहुंच गया। क्यों पहुंच गया भाई? तो गाड़ी चलेगी आहिस्ता आहिस्ता, वो मंजिलें तय करती जाएगी, एक एक स्टेशन गुजरता जाएगा, आखिर लाहौर आ ही जाएगा। आप गाड़ी में बैठे रहे, पटरी से ना उतरे, ठीक है ना जी?
सर एक और सवाल है, थोड़ा सा है टेक्निकली
जी।
सर ये सांस की मशकों में कहा जाता है कि जेरे निगरानी करें,
कोई नहीं जी, आप सांस पूरा लें, निगरानी वाली मशकें और हैं।
ठीक है सर,
आप सांस पूरा लें, फेफड़ों को जरा जमा के रहें। देखे ना, हम अधूरे लोग अधूरा सांस लेते हैं तो अधूरी सलाहियतें, और तवक्को है कि हम पता नहीं क्या जमीन और आसमान के कलाबे में ला दें। नहीं भाई, अभी तो हमें सांस लेना ही नहीं आया सलीके से, पूरा सांस ही नहीं लेते हम, इतने मसरूफ लोग हैं। मेरा ख्याल है वक्त खत्म हो गया, फिर रहती है बात। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।